तो क्वेश्चन है कि तुलसी आरती में राधा गोविंद जी का नाम आ रहा है कि राधा गोविंद जी का प्रेम चाहिए, और कहाँ आ रहा है? शिष्काष्टक में भी, शिक्षाष्टक में कहाँ आ रहा है? राधा गोविंद विरहेन में। हाँ, सब कुछ शून्य दिख रहा है ना, तो ऐसा क्यों है? हाँ, तो सिर्फ गोविंद नाम क्यों आ रहा है? लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जब हम तुलसी आरती गा रहे हैं कि हमें वृंदावन में राधा गोविंद का प्रेम चाहिए, तो एक्चुअली में हमें राधा गोविंद का प्रेम नहीं चाहिए। वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मुझे चाहिए, है ना? हमारे में योग्यता नहीं है ये बोलने की। तो जब भी हम तुलसी आरती गाते हैं ना, हे रिवो सदा, कि मैं हमेशा देखूं भगवान के दर्शन करूं कुंज में, तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। हम अपने लिए सोच के ये भजन नहीं गा सकते, ये आरती हमें ये सोच के नहीं गानी चाहिए कि हम बोल रहे हैं। ये जो आरतियाँ हैं हमें ये सोच के बोलनी चाहिए कि वो हमारे आचार्य बोल रहे हैं, उनको इतना विरह हो रहा है, वो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं भगवान की पूरे से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, और अधिक सेवा करना चाहते हैं, है ना? हमारे में ऐसी योग्यता और भाव नहीं है, इसीलिए हम तो सिर्फ दोहरा रहे हैं उनके शब्दों को। हमारी ऐसी अभिलाषा नहीं है, है ना? मोर आई अभिलाष बिलास मुझे दिए, बस हमारी ऐसी आशा नहीं है। वो जो अभिलाष है, वो जो आशा है, वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की है। चैतन्य महाप्रभु जब कह रहे हैं कि पूरा जगत शून्य दिख रहा है गोविंद विरहेन में, तो वो उनको दिख रहा है, हमें दिख रहा है, तो वो उनकी प्रार्थना है। हम दोहरा रहे हैं, हमारा लक्ष्य है वो, हमारे लिए पूजनीय है वो प्रार्थना। वो प्रार्थना हम नहीं कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भक्तु में, हमारी क्या औकात है हम भगवान को बोले कि हमें दर्शन दो? हमने किया ही क्या ऐसा? वो हमारे आचार्यों की प्रार्थनाएं हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं भगवान के सामने कि भगवान को अपने शुद्ध भक्तों की जो बातें हैं, जो उनके भजन है, उसको सुनना अच्छा लगता है ना? अब जो प्रश्न था आपका, मूल प्रश्न, कि वो भगवान के इतने सारे नाम है, सिर्फ राधा गोविंद जी का नाम क्यों आ रहा है, यही प्रश्न है ना आपका? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि भगवान, हमारे आचार्यों ने बताया कि भगवान की भक्ति तीन स्तर पे होती है। पहली स्टेज है जब हम भगवान से संबंध स्थापित करते हैं, उसमें हम मदन मोहन जी को अपना अधिष्ठाता देव मानते हैं, हम उनको अपना लक्ष्य मानते हैं। मदन मोहन जी के द्वारा हम भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हैं। क्यों? क्योंकि हम काम वासना अर्थात मदन से पीड़ित हैं, और कृष्ण मदन अर्थात कामदेव को मोहित करने वाले हैं, तो अगर हम कृष्ण की शरण लेंगे तो काम वासना से छुटकारा मिल सकता है। तो मदन मोहन जी की शरण लेके हम काम वासना से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, एक संबंध स्थापित हो जाता है। उसके बाद संबंध स्थापित होने के बाद फिर हम भगवान कृष्ण को सेवा अर्पित करते हैं, और भगवान कृष्ण का जो विग्रह जो सेवा स्वीकार करता है वो है गोविंद देव जी। गोविंद देव जी अभिदेय के विग्रह हैं, जिस प्रकार मदन मोहन जी संबंध के विग्रह हैं, इसी प्रकार गोविंद देव जी अभिदेय अर्थात प्रैक्टिकल सेवा कैसे करनी है उसके विग्रह हैं। तो जब भी हम बात करते हैं कि सेवा कैसे भगवान को करनी है, तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में गोविंद देव जी का स्मरण आता है, स्मरण आना चाहिए। और जब हम सेवा करते करते शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, हम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, सिद्धावस्था में आ जाएंगे, तो हमें भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो जाएगी। तो उस समय जो जो आश्रय, जो हमारा प्रयोजन विग्रह है, प्रयोजन विग्रह कौन है? गोपीनाथ जी, है ना। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए हमारे तीन गौड़ीय वैष्णव के तीन मेन विग्रह हैं, संबंध विग्रह, अभिधेय विग्रह और प्रयोजन विग्रह। तो संबंध विग्रह मदन मोहन जी हैं, अभिधेय विग्रह जिसमें प्रैक्टिकल सेवा की जाती है वो गोविंद देव जी हैं, और सिद्ध, जब हम सेवा में सिद्धि प्राप्त कर लेंगे तो हमें श्री श्री राधा गोपीनाथ की शरण हमें प्राप्त होगी, जो कि हमारे प्रयोजन विग्रह हैं, है ना। तो क्योंकि जहाँ पर भी सेवा की बात होती है, सेवा हम ऑफर करते हैं गोविंद देव जी को, इसलिए बहुत जगह गोविंद देव जी का नाम आता है।